स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओं, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, मुबारक है जिसके गुनाह धुल गए, बख्शी गई जिसकी हर खता, बख्शी गई जिसकी हर खता। शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा, शुक्रिया ए खुदा। मुबारक है जिसके गुनाह भूल गए, मेरा गम उतना ही बढ़ा। मैं जितना खामोश रहा मेरा गम उतना ही बढ़ा। रात और दिन मुझ पे खुदा हाथ तेरा भारी था। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मैंने अपनी खता को माना, अपनी बदकारी को जाना। मेरे खुदाया मेरी खता को तूने माफ किया। शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया ऐ खुदा, शुक्रिया।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आपको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए आज भी फिर से तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि पिछले अध्ययन में हम नई सृष्टि, नई देह और नया उद्देश्य के बारे में देख रहे थे। आप ध्यान दें कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो यह विश्वासियों के भाईचारे की कड़ी है। गलातियों की पत्री 5:6 में लिखा है, मसीह यीशु में यह खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास से प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेम ही पहचान है। प्रेरित यूहन्ना कहता है 1 यूहन्ना 4:10-16 में, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया है और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। मेरे मित्रों, आपको यह मानने में कठिनाई होगी कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर से प्रेम करने में भी आपको कठिनाई होगी यदि आप अन्य विश्वासियों से प्रेम नहीं रखते। पहला योना के पत्री 4 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि हम उसे इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहला पत्रस के पत्री 1 अध्याय उसके 8 पद में पत्रस लिखता है, उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करते हो, ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। आपके जीवन में ज्योति और आनंद लाने वाला केवल और केवल परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है। हम देखते हैं सब बातें अर्थात भला और बुरा, ज्योति और अंधकार, मधुर और कटु, आसान और कठिन, सुख दुख, समृद्धि और कंगाली, स्वास्थ्य और रोग, शांति तूफान, सुविधा और कष्ट, जीवन और मृत्यु, सब मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। यह कारण वाच्य है और इसका अर्थ है परमेश्वर सब बातों को नियंत्रण में रखे हुए है। दुर्घटना नाम का कुछ भी बात नहीं है। आपको यूसुफ की कहानी याद होगी। यूसुफ का जीवन कड़वाहट, निराशा, कष्टों से भरा हुआ था, परंतु एक दिन वह अपने भाइयों से कहने के योग्य हुआ, जिसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय के 20 पद में पढ़ते हैं, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया और मुझे पूरा विश्वास है कि हम परमेश्वर की संतान एक दिन अतीत को देखते हुए कहेंगे, यह सब जो हुआ भलाई उत्पन्न करने के लिए हुआ। अय्यूब ने कहा 13 अध्याय उसके 15 पद में, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। मेरे मित्रों, हमें परमेश्वर में ऐसी प्रेम की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि वह भलाई उत्पन्न करेगा क्योंकि वही प्रेरणा उत्पन्न करता है, वह क्रियाशीलता प्रदान करता है, वह हमें ऊर्जा देता है। तथापि हम यिर्मयाह की नाई प्रायः पुकारते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 11 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना न करना, न कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी न सुनूंगा। जी हाँ, तूने मुझे कष्ट क्यों दिए हैं, अर्थात देखने के लिए क्यों दिए हैं। सैन फ्रांसिस्को के भूकंपग्रस्त क्षेत्र में एक भक्तिन विचरण कर रही थी और मुस्कुरा रही थी। किसी ने उससे पूछा, आप ऐसी स्थिति में कैसे मुस्कुरा सकती हैं? उसने उत्तर दिया, मैं आनंदित हूँ कि मेरा परमेश्वर पृथ्वी को हिला सकता है। जीवन और मृत्यु का निर्भय होकर सामना करना कैसी अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, पौलुस जो बेझिझक भविष्य का सामना करने के योग्य था, कहता है प्रेरितों के काम 21 अध्याय उसके 13 पद में, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जी हाँ, हम में से अनेक उसके लिए ऐसे समर्पण के साथ आते हैं। अब ध्यान दें कि सब बातें मिलकर उनके लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है जो बुलाए हुए हैं, और यह उसके उद्देश्य के निमित्त है। अधिकांश जनों के लिए यह समझना कठिन है, बुलाए गए वे लोग हैं जिन्होंने निमंत्रण पत्र प्राप्त ही नहीं किया वरन स्वीकार किया है, और उनका जन्म स्वर्ग से हुआ है, उन्होंने परमेश्वर से प्रेम का अनुभव प्राप्त किया है। पौलुस तीन प्रकार के मनुष्यों का उल्लेख करता है। मेरे विचार में संसार में ऐसे तीन समूह हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 23 और 24 पद में वह इन तीन समूहों का उल्लेख करता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उसके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ध्यान दीजिए, पहला, यहूदी धर्म में प्रथाओं और संस्कारों में विश्वास रखते थे। दूसरा, यूनानी अन्य जाति दर्शन शास्त्र और मानवीय बुद्धि में विश्वास रखते थे, उनके लिए क्रूस मूर्खता था। और तीसरा है बुलाए हुए, यहूदी और यूनानी दोनों ही थे जो न तो धर्म के कारण न ही ज्ञान के कारण चुने हुए थे। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था, उनके लिए क्रूस उद्धार के निमित्त परमेश्वर का विस्फोटक था। बुलाए हुए ने परमेश्वर की बुलाहट सुनी और यही आपके लिए और मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। मेरे मित्रों, मैं आपको कछुओं का उदाहरण देता हूँ। आप तालाब में जाकर 10 कछुओं से कहें, मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। उनमें से 9 कहते हैं, हमें इसमें रुचि नहीं, हम इसी में संतुष्ट हैं, हम इसी वातावरण में सुख पाते हैं। परंतु एक कछुआ कहता है, हाँ मैं उड़ना चाहता हूँ। यही बुलाया हुआ है और यही है वह जिसे उड़ना सिखाया गया। अब उसका अन्य कछुओं से कोई संबंध नहीं। कछुए कछुए इसलिए हैं कि वे कछुए हैं। मेरे मित्रों, भ्रष्ट इसलिए भ्रष्ट है क्योंकि वे ऐसा जीवन पसंद करते हैं। संसार में ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो भ्रष्ट होने के लिए वाध्य किया जाए। वे भ्रष्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने भ्रष्ट होने का चुनाव किया है। मेरे मित्रों, वर्षों पूर्व एक युवक किसी कलीसिया का सदस्य बनना चाहता था, अतः वहाँ के सेवक उसकी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने पूछा, आपने उद्धार कैसे पाया? उसने कहा, परमेश्वर ने अपनी भूमिका निभाई और मैंने अपनी। उनकी समझ में यह विचार सही नहीं था, इसलिए उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, परमेश्वर की भूमिका क्या थी और आपकी भूमिका क्या थी? उसने एक अति उत्तम उत्तर दिया, परमेश्वर की भूमिका उद्धार करना था और मेरी भूमिका पाप करना था। मेरा पापी स्वभाव और मेरे विद्रोही पैर मुझे जितना तेज भागा सके मैं उससे दूर भागा और वह मेरे पीछे भागा जब तक कि मुझे पकड़ नहीं लिया। मेरे मित्रों, मैंने भी ऐसे ही उद्धार पाया था। इसे जो चाहे वह आ जाए और जो विश्वास करे पर कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं पड़ता है। हेनरी वार्ड वीचर ने कहा, जो भी चाहे चयनित जन है और जो न चाहे वे चुने हुए नहीं है। यह सब उसी के उद्देश्य के निर्मित है। मेरे प्रियो, यदि आपने अब तक अपने मन का मेल परमेश्वर से नहीं कराया है तो समय आ गया है कि आप ऐसा करें, क्योंकि यह उसका जगत है, उसी ने इसकी रचना की है। मैं नहीं जानता कि उसने पृथ्वी को घनाकार बनाने की अपेक्षा गोल क्यों नहीं बनाई। उसने इससे कार्य में मेरी राय नहीं पूछी, उसने इसे गोल बनाया क्योंकि वह ऐसा ही करना चाहता था। मेरे मित्रों, उसी का उद्देश्य पूरा होता है, उसमें अपना उद्देश्य पूरा करने का सामर्थ्य और बुद्धि है। परमेश्वर जो भी करता है वह उचित ही है। आप परमेश्वर की आलोचना न करें कि कहें, उद्धार पाने वालों को उद्धार देने का अधिकार उसके पास नहीं है। उसे अधिकार है, वह न्यायोचित है और प्रेमी है। मेरा परमेश्वर जो भी करता है वह उचित है। मेरे मित्रों, एक समय एक प्रचारक हुआ करता था जो रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय पर तैयार एक उपदेश में उसने कहा, चुनाव के सिद्धांत पर प्रचार करने के उसके 3 कारण थे। यह अध्याय घमंड, प्रकल्पना और निराशा की जड़ पर कुल्हाड़ी रखता है। मुझे यह बात उचित जान पड़ती है। मेरे प्रियो, चुनाव के सिद्धांत में मनुष्य के घमंड का कोई स्थान नहीं है। यह परमेश्वर का कार्य है, उसकी बुद्धि है और उसका उद्देश्य है जो पूरा किया जा रहा है। परमेश्वर की इच्छा अनादि काल से चली आ रही है और आप यह ना सोचें कि आप उसे रोक सकते हैं। उचित तो यह होगा कि आप उसमें सवार हो जाएं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने उनसे पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। मेरे मित्रों, क्योंकि पद 28 का संदर्भ देते हुए हमें स्मरण दिलाता है कि चयनित जन भ्रष्ट नहीं हो सकता, परंतु वह बुलाए हुओं की चर्चा करता है, मुक्ति के लिए विहित जनों की चर्चा करता है। ये मुक्ति के लिए विहित जनों का भ्रष्ट जनों के साथ कोई संदर्भ नहीं है। उनके संबंध में यह काम में नहीं लिया गया है। यदि आप किसी से सुने कि वह कोई भ्रष्ट होने के लिए पूर्ण नियत है तो वह धर्मशास्त्र के अनुरूप नहीं है। मुक्ति के लिए पूर्व विहित का अर्थ है कि परमेश्वर आपको उद्धार देता है तो वह आपको पार भी लगाएगा। जिसको उसने पहले से जाना उसे उसने पूर्व नियत भी किया है, और जिसको उसने पूर्व नियत किया उसको उसने बुलाया, और जिसको उसने बुलाया उसे धर्मी भी ठहराया, और जिसको उसने धर्मी ठहराया उसको उसने महिमान्वित भी किया है। दूसरे शब्दों में यह या ये पद पवित्रीकरण पर आधारित हैं, तथापि पौलुस पवित्र होने की चर्चा ही नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पवित्रीकरण विश्वासी के मन और जीवन में परमेश्वर का काम है। यह परमेश्वर का अनंत उद्देश्य है। इसका सीधा सा अर्थ है, जब प्रभु जो भेड़ों का प्रधान चरवाहा, अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा 100 भेड़ों को लेकर निकलता है तो वह 100 भेड़ों को ही लेकर घर लौटेगा, वह उनमें से एक को भी नहीं खोएगा। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हमारे प्रभु ने इसका दृष्टांत सुनाया था जो लूकार्ची सुसमाचार के 15 अध्याय में मिलता है। यह चरवाहा मसीह यीशु है। एक भेड़ खो गई थी, क्या उसने कहा कि उसे छोड़ दो? 99 भेड़े तो हैं। भेड़े पालने वाले जानते हैं कि 50% से अधिक मेमने बच जाएं तो आप सफल हैं, परंतु प्रभु 99 भेड़ों से संतुष्ट नहीं है। उसे महिमान्वन के लिए पूरी 100 भेड़े चाहिए। मैं इसे व्यक्तिक बनाना चाहता हूं। जब वह भेड़े गिने गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 97, 98, 99, तब वहां पर एक भेड़ कम थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वह चूक गया, उसे छोड़ दो, क्योंकि लोग भी यही सोचते हैं कि वह पार नहीं लगेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वह उसे नहीं छोड़ेगा, चरवाहा उसके पीछे जाएगा। चुनाव का सिद्धांत कहता है कि प्रभु पूरी 100 भेड़ों को लेकर घर लौटेगा। यह सिद्धांत भयावह नहीं, अद्भुत है। इसका अर्थ यह है कि वह खोया हुआ भेड़ वहां पर होगा। हो सकता है कि वह खोया हुआ भेड़ आप हैं, आप छूट गए हैं, और परमेश्वर आपको भी उस झुंड में शामिल करना चाहता है। आप भी वहां होंगे। मेरे मित्रों, यदि आपने मसीह यीशु में विश्वास किया है, हमारे इन आशा के दिनों में यह विचार सांत्वना का विचार है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जी हाँ, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? मेरा उत्तर है, मैं क्या कह सकता हूं? यह तो इतना उत्तम है कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर हमारी ओर है, उसकी उपस्थिति में हम पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता है। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 32 पद में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? जी हाँ, यह कैसी उत्तम बात है। उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा। उसने अब्राहम के पुत्र को छोड़ दिया था, परंतु अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने अपना पुत्र दे दिया कि हमारे लिए मरे, वह हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? अब कोई कहे, मैं तो संभल नहीं सकता, वह आपके लिए यह भी करेगा, वह आपको संभालेगा, उसकी भेड़ें सुरक्षित हैं। मेरे प्रियो, इससे नहीं कि वे प्रतिभावन हैं। मुझे किसी चरवाहे ने बताया कि भेड़ें मूर्ख होती हैं और वे सुरक्षित नहीं रहती। उनके न तो अन्य जानवरों की तरह बड़े दांत हैं और न ही वे अपनी रक्षा कर पाएंगे। वे तो तेज दौड़ती भी नहीं हैं। वे असहाय पशु हैं। यदि कोई भेड़ यह गाना गाए, मैं सुरक्षित हूं, तो क्या वह वास्तव में सुरक्षित है? हाँ, एक चतुर भेड़ नहीं, मूर्ख भेड़। वह भेड़ सुरक्षित है क्योंकि उसका एक चरवाहा है जो अच्छा चरवाहा है। मेरे मित्रों, वह हमें उसके साथ सब वस्तुएं निर्मोल क्यों ना देगा? व्हाइट एल मूडी ने एक उदाहरण दिया था। कल्पना करो कि मैं देश के सबसे बड़े सुनार की दुकान में गया और उसने अनमोल हीरा लाकर कहा, यह आपके लिए है, और मैं कहता हूं, आप मुझे यह अनमोल हीरा दे रहे हैं? वह कहता है, जी हाँ, मैं आपको यह हीरा दे रहा हूं। यदि उसने वह हीरा मुझे दे दिया तो क्या मैं उसकी कीमत पूछूंगा या उसे कागज मांगूंगा कि उसे लपेट कर घर लाऊं? मेरे मित्रों, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया कि मेरे लिए मरे, तो क्या वह जीवन की हर आवश्यकता या आवश्यक वस्तु नहीं देगा, वरन आने वाले जीवन की भी आवश्यकताओं को वह पूरी करेगा। हम रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 33 और 34 पद में पढ़ते हैं, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर के चयनित जन अर्थात चुने हुए जन धर्मी ठहराए गए पापी हैं। परमेश्वर ने उनके पीछे अपना सिंहासन रखा हुआ है, उन पर दोष कौन लगा सकता है? उन पर कोई भी दोष नहीं लगा सकता। क्यों? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से भी जी उठा है। मसीह यीशु ने सब दोष हटा दिए और विश्वासी मसीह के चार गुना काम के कारण सुरक्षित है। आइए देखें, पहला है, मसीह हमारे लिए मरा, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया। दूसरा है, मसीह मुर्दों में से जी उठा, हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा। तीसरा है, वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। मेरे मित्रों, इस समय भी वह वहां है, वह जीवित मसीह है। क्या आपको उसकी आवश्यकता है? आप उससे विनती क्यों नहीं करते हैं? चौथी बात, वह हमारे लिए विनती करता है। क्या आपने आज सुबह अपने लिए उससे विनती की है? आपको करनी चाहिए थी। यदि आप चूक गए हैं तो भी वह विनती करने से नहीं चूकता है, उसने आपके लिए विनती की है। यह कैसा अद्भुत सौभाग्य है। मसीह यीशु का यह चार गुना कार्य है जिसके कारण परमेश्वर के चुने हुओं पर कोई दोष लगा नहीं सकता है। आइए हम पढ़े रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 35 पद। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? मेरे मित्रों, यहाँ यथा संभव कल्पना करके कहता है, क्या यह संभव है कि क्लेश हमें मसीह के प्रेम से अलग करे? जी नहीं, क्योंकि वह ऐसा नहीं होने देगा। संकट या उपद्रव? ओह, आप सोचेंगे कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, परंतु उसने आपको नहीं छोड़ा है। सताओ, इसका अर्थ है कि आपके विरुद्ध प्रचार किया जाएगा, परंतु यह आपको मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगा। या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, यह पौलुस की संक्षिप्त जीवनी है। वह व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता था कि ये सब बातें मसीह के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकती हैं। रोमियो के पत्र 8 अध्याय के 36 पद में लिखा है, जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों की नाई गिने गए हैं। मेरे मित्रों, यह भजन संहिता 44 उसके 22 पद का संदर्भ है। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। अनुग्रह के इस युग में यह भक्तों का भयावह चित्रण है। मैं अपने संपूर्ण मन से विश्वास करता हूँ कि यह आज भी परमेश्वर की संतान के विरुद्ध शैतानिक तंत्र का व्यवहार है। कलीसिया का इतिहास इसे स्पष्ट करता है। मेरे प्रियो, यदि आप मसीह के लिए खड़े हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया और कहा कि जब मैं 15 वर्ष का था तब मुझे बूचर खाने में नौकरी मिली और मुझे कसाई के पास खड़ा होना पड़ता था। सैकड़ों की संख्या में भेड़ों का वध देखना भयावह दृश्य था। मैं उसे देखकर ऐसा व्यथित हो जाता था कि मुझे बाहर जाकर ताजी हवा में बैठना पड़ता था। मेरे मित्रों, आज के युग में परमेश्वर के भक्तों के साथ किए गए व्यवहार को देखना भी हृदय विदारक है, परंतु इसके कारण हम मसीह के प्रेम से अलग नहीं होंगे। रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 37 पद में लिखा हुआ है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। जी हाँ, वध के लिए जा रही भेड़ जयवंत कैसे हो सकती है? मसीह विश्वास का यह एक और अद्भुत असंगत कथन है। विजेता से अधिक होने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता पाना जो हमारे लिए जय प्राप्त करता है, जो हमें हारने नहीं देता है। विजयी मसीह की है, हमारी नहीं। जयवंत जीवन हमारा जीवन नहीं है, यह मसीह का जीवन है। मित्रों, आइए हम पढ़ते हैं रोमियो के पत्र 8 अध्याय उसके 38 और 39 पद में क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। जी हाँ, मैं निश्चय जानता हूँ कि वह जानता था मृत्यु हमें अलग नहीं कर सकती। वह तो वास्तव में हमें उसके पास उसकी उपस्थिति में ले जाती है। आरंभिक कलीसिया के शहीदों की मृत्यु के समक्ष प्रतिक्रिया यह थी, धन्यवाद क्योंकि तू मुझे मेरे उद्धारकर्ता की उपस्थिति में ले जाएगी। आप ऐसे मनुष्यों को कष्ट नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, जीवन का सामना करना मृत्यु का सामना करने से अधिक कठिन है, परंतु जीवन की परीक्षाएं, विफलताएं, निराशाएं, असुरक्षा और कष्ट हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकते हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। स्वर्गदूत, मेरे विचार में पतित स्वर्गदूत प्रधानताएं एवं अधिकार विश्वासी के आत्मिक वैरी हैं। इसे हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 पद में देखते हैं। तब हम देखते हैं वर्तमान उपस्थिति एवं परिस्थितियां, तब भविष्य आने वाला समय, तब है न ऊंचाई न गहराई, संभवतः अंतरिक्ष का यह युग है, कोई और सृष्टि अर्थात अन्य कोई भी वस्तु जिसके बारे में आप सोचें, कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। हमने यह अध्याय निर्दोष होने से आरंभ किया था और अलग न होने से हम अंत करते हैं, और इनके मध्य सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। क्या आप इस पर आधारित उन्नति कर सकते हैं? यह अत्यधिक ही अद्भुत बात है। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं ये आशा करता हूँ कि इस अध्ययन के द्वारा आपने बहुत सारी नई बातों को सीखा है, और इसमें हमें बताया गया है कि परमेश्वर के लिए जो हमारे जीवन को चुनता है हमेशा आशीष देता है, और वचन हमें बताता है कि सारी बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती है और परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। जी हाँ, यदि आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं, वह आपके साथ में है क्योंकि वह आपसे प्रेम करता है। लेकिन क्या आज आप उससे प्रेम करते हैं? आज मुझे और आपको जांचने की आवश्यकता है। आइए हम सब अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, उससे कहें, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, आप हमारी कमजोरियों से हमें बाहर निकालिए, हम बाहर आना चाहते हैं, हम आपके साथ चलना चाहते हैं, और निश्चय जाने कि वह आपकी सहायता करेंगे। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।